दूसरे वो हैं कि जो कुरान सुन्नत से तो नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने मुशाहदे से, अपने तजुर्बे से, अपने दिल के जज्बात से लिखे, उसमें से कुछ चीज़ें हमारे जहनों में कुछ नामों के साथ भी मारूफ हैं। कभी आपको बुक्स नौ की दिखें तो उसमें कई नाम हैं, और हैरत ये कि नाम वो उर्दू के हैं जिसमें अरबी ही नहीं है। बस आप देखिए कि दुरूद माही, दुरूद अंजीना, ये उर्दू के लफ्ज़ है ना, दुरूद लखी, लाख से। अब सवाल ये कि एक दुरूद जिसका नाम ही उर्दू में है, तो फिर अरब लोग वो कैसे पढ़ेंगे और इंग्लिश वाले उस नाम को कैसे जानेंगे? इसका मतलब कि ये कुछ बुजुर्गों के बोले कहे हुए लफ्ज़ हैं। ये दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म है कि ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना पुराने दौर के बुजुर्गों के हैं, या अगर हैं भी लेकिन उसमें अल्फाज शिरकिया है। और ऐसी बहुत सारी मिसालें इन्हीं नामों में देखिए जाके, कई जगह अकायद से टकराते हैं, तो करें क्या? आप ओरिजिनल गुल अहमद का सूट या फिर रेप्लिका और दो तीन और चीज़ें पेश की जाएं, आप कौन सा लेंगी? ओरिजिनल लेंगे। किस दुकान से लेना चाहेंगे? उन्हीं की दुकान से लेंगे क्योंकि उसमें तो शक ही नहीं है। बस ये जवाब है। जिसमें शक है उसको छोड़ दो, जिसमें नहीं है उसको ले लो। ज्यादा से ज्यादा भी आप कर लें तो वो बातें जो लोग मोहब्बत में करते हैं, उसकी हैसियत एक नात की है, एक लोगों की बात है कि उन्होंने बड़े खूबसूरत लफ्ज़ जोड़ तोड़ कर दिए, तो सवाब तो कुरान सुन्नत की किसी बात का है। हाँ, जिसकी कतन इजाज़त नहीं, वो शिरकी अल्फाज है। अब आइए ज़रा इब्ने जौजी राह महुल्ला, जिनको इब्ने कय्यम अल जौजी कहते हैं, उन्होंने डिफरेंट फवायद पेश किए हैं दुरूद के, और इनको पढ़ने के साथ ही हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। बेहतरीन वजीफा है, उठते बैठते नबी के ऊपर दुरूद भेजिए, क्योंकि नबी की जो मेहनतें थी, जो उन्होंने हमारे लिए किया, हम उसका हक तो अदा कर नहीं सकते, तो चलिए कुछ तो हम उनको दे सकते हैं। मिलेगा क्या? नंबर एक, अल्लाह ताला की इताअत और फरमा बरदारी हासिल होती है। फिर वो कहते हैं कि दुरूद पढ़ने से इंसान फरिश्तों के अमल के साथ मुताबकत करता है, क्योंकि फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। तीसरी बात यह कि अल्लाह ताला की जानिब से 10 रहमतें अता की जाती हैं दुरूद पढ़ने पे। एक मर्तबा पढ़ने से 10 दर्जात बुलंद होते हैं। ज़रा सोचिए, लफ्ज़ दर्जा हमारे लिए कितने अहम है। रैंक बढ़ गया, आपके मियाँ साहब की जॉब बढ़ गई, आपके बेटे ने टॉप कर लिया, तो दुरूद पढ़ने से आपके मेरे रैंक्स बढ़ते हैं। फिर इसी तरह से नामे अमाल में 10 नेकियाँ लिख दी जाती हैं। एक मर्तबा दुरूद पढ़ने से 10 गुना मिटा दिए जाते हैं। फिर एक और फ़ायदा क्या है कि दुरूद से आगाज़ करने से दुआ कबूल होती है, यानी बाज़ जगह आता है कि दुआ के पर हैं, शुरू आखिर अगर दुरूद पढ़ लिया जाए तो दुआ ज़्यादा कबूल होती है। फिर इसी तरह एक और फ़ायदा क्या है कि रोज़े क़यामत शिफाते रसूल की सआदत नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला। फिर उसके बाद दुरूद शरीफ गुनाहों की मग़फ़रत का बायस है। ज़ाहिर है कि इंसान होने के नाते हम कई कमी पेशियों का शिकार होते हैं, इंशाल्लाह कफारात बनेंगे। फिर एक बहुत प्यारा फ़ायदा क्या है कि दुरूद इंसान के गमों अलम का मदावा बन जाता है। दुखी दिल के ऊपर एक किस्म की मरहम पट्टी है दुरूद पढ़ना। फिर तंग दस्त के लिए दुरूद सदक़े के कायम मुकाम है। हर एक के पास पैसे नहीं हैं। आप कहते हैं महंगाई है, गुर्बत है, पूरी पूरी तनख्वाह है मियाँ साहब की, क्या करें? आप दुरूद पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह ये सदका बन जाएगा। फिर दुरूद इंसानी ज़रूरियात पूरी होने का ज़रिया है, यानी अल्लाह ताला गैब से उस बंदे की ज़रूरियात को पूरा करता है। फिर इसी तरह रहमत इलाही और फरिश्तों की दुआएं नसीब होती हैं उस शख्स को जो दुरूद की कसरत करता है। दुरूद पढ़ना तज़किया नफ्स का बायस बन जाता है, यानी बार बार जब आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ना, तो आपको अल्लाह के नबी से मोहब्बत महसूस होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप अपने अंदर से गलत चीज़ों को निकालेंगे। फिर इसके बाद मौत से पहले बंदे को जन्नत की बिशारत मिल जाने का सबब है, अल्लाह चाहे तो ख्वाब के ज़रिए, अल्लाह चाहे तो दिल की तसल्ली के साथ, और ना भी बताए लेकिन उसको जन्नत की खुशखबरियाँ दिला देता है और क़यामत की हौलनाकियों से निजात मिल जाती है। आप सोचिए ज़रा कि एक जुमले में क्या तासीर है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनतें बहुत की, ज़िंदगी में लोगों ने सताया, वो वैल्यू नहीं दी, अब उनको अल्लाह के तरफ से, यानी आप ये कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों का एक हल्का सा ऑनर और एक ग्रेटिट्यूड पेश करना होता है दुरूद की सूरत में। कुछ और फवायद भी नोट कर लीजिए अगर चाहें तो, कि मजलिस दुरूद पढ़ने से पाकीज़ा हो जाती है। किसी भी महफिल से आप उठें तो दुरूद पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ वैसे भी गलत बातें नहीं होंगी, जहाँ आप अल्लाह के नबी का तذکرہ करेंगे, फिर रोज़े क़यामत ऐसी महफिल बायसे हसरत नहीं होगी। दुरूद पढ़ने से फ़क्रो फ़ाका ख़त्म हो जाता है, और इसी तरह से दुरूद पढ़ने वाले को बुखल से निजात मिलती है। अब आप देखिए कि सिर्फ़ एक दुरूद पढ़ने के 20 फ़ायदे हैं, तो कितना वक्त होता है हमारे पास। तो दिल की गहराई से कहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। उसके बाद अब आगे कुछ लोग जो कहते हैं जी दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए, दुरूद ऐसे वो, तो लिख लीजिए 5758 नंबर, गुस्ताखाने रसूल पर अल्लाह की लानत है। नबी सल्लम की ज़िंदगी में हो या बाद में, जो कोई अल्लाह के नबी के बारे में गलत बात कहेगा वो अल्लाह की रहमतों से दूर होगा। और मदीना में कुछ लोग ऐसे थे, दिलों में कुछ और था लेकिन मुंह से अल्लाह के नबी से मोहब्बत के दावे करते थे। हम दुआ करते हैं कि हमें नबी सल्लम की इज़्ज़त, उनका एहतराम करने की तौफीक भी दे और उनके मिशन के राही बना दे। फिर इसके बाद आगे है जी आयत 59 में, अब सूरत फिर तकमील की तरफ जा रही है, चेहरे के पर्दे का हुक्म। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, क्या चेहरे का पर्दा है? तो मैं सवाल करती हूँ कि फिर पर्दा किधर का है? कपड़े तो मर्द भी पहनते हैं, औरतें भी पहनती हैं, बच्चे भी पहनते हैं, बूढ़े भी पहनते हैं। तो ये आयत दिल के सारे पुराने ग्रजेस बातों को अलग करके सुनिए। या यूहन्नबीश, देखिए नबी को बीच में डाला गया, क्योंकि अल्लाह के नबी की निस्बत से जो बात होगी उसमें हमारी तवज्जो ज़्यादा होगी। कुल, फिर आप कहिए। या नबी के अलावा ऐसे भी कही जा सकती थी, कुल ली अजवाजिक, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुल हो अल्लाहु अहद, कुरान में बहुत सी आयते हैं। ये भी नहीं, पहले आपका नाम लिया गया, कभी भी किसी से रिश्ता लेना देना हो ना तो घर के बुजुर्गों को बीच में डालते हैं, बड़े कहेंगे तो इनकार नहीं होगा। यहाँ अल्लाह के नबी का नाम डालकर अल्लाह ने एक तो इज्जत भी दी और औरतों को एहसास भी दिला दिया और मर्दों को भी खास तौर पे। फिर क्या कहा, कुल कह दीजिए ली अज़वाजिक, बीवियाँ। हम कहते चलो शुक्र है, ये तो मातुल मोमिनीन के लिए था जी। कई लोग आज भी ये मुगालता देते, नहीं पढ़ता तो वो नबी की बीवियों के लिए था। चलो ठीक है, मान लेते हैं, छोड़ दें। आगे चलिए, वह बनातिक और अपनी बेटियाँ, उम्मत की औरतें नबी की बेटियाँ होती हैं। नहीं, आप कहते नहीं जी ये तो फातिमा और रुकैया और उम्मे कुलसूम वगैरह थी, इसको भी निकाल देते हैं। आगे क्या है, बनिसाइल मोमिनीन, मोमिनों की औरतें। अभी भी बात नहीं समझ आई, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह दिल खोल दे। क्या कहो, युदनीन अलैहिन्न मिन जिलाबीबिहिन, अपने ऊपर जिलबाब पहन लें। जिलाबीब जो है ना, ये जिलबाब की जमा है। और डिक्शनरी में जाकर देखिएगा, अरब डिक्शनरी, अरबी उर्दू खोल लें, अरबी इंग्लिश खोल लीजिए, जिलबाब कहते हैं वो कपड़ा जो सर पे डालें तो पाँव छुप जाए। सीधी सी बात है, ज़ालिका अदना, ये बड़ा करीब है इस बात के कहीं यो रफना, कि वो पहचान ली जाए। हम कहते हैं पर्दा इसलिए करना है कि ना पहचानी जाए, अल्लाह कह रहे पहचान ली जाए। ये कौन सी पहचान है? नंबर एक, ये मुसलमान औरत है। नंबर दो, ये बाहया औरत है। यदि पर्दा असल में पता कि आई एम नॉट अवेलेबल, डोंट टेक इंटरेस्ट इन मी, लिहाजा फला यूज़ई, ना फिर तकलीफ़ नहीं दी जाएंगी। जो छेड़खानी है, जो बदतमीजी है, जो बेतकल्फी को करना चाहेगा, तो पर्दा एक किस्म का बैरियर बन जाएगा कि तुम मेरी तरफ ना आओ। जो पिछली जिंदगी में हो गए कोई बात नहीं, वकान अल्लाहु गफूर रहीमा। अब युद्दीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन को देखिए, तो चंद बातें पर्दे से मुतल्लिक। पर्दा औरत की हिफाजत का जरिया है, पर्दे के जरिए औरत के वक्कार में इजाफा होता है, औरत की तरफ बुरी निगाहें नहीं पड़ती। बुरी निगाहों को जज्ब करने में लिबास का बहुत दखल होता है। एक औरत ठंडे दिल दिमाग से सोचेगी तो उसको ये बात समझ आएगी। छोटी सी मिसाल लीजिए कि कोई लॉलीपॉप किसी को पेश किया जाए और उसका कवर उतरा हुआ है और उस पर कुछ मक्खियाँ भी पड़ी हुई हैं, इसके साथ ही एक दूसरा लॉलीपॉप रखा जाए जो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड है, कौन सा लॉलीपॉप बच्चा उठाएगा या आप उठाएंगे? ये है पर्दा। औरत जितनी भी नेक क्यों ना हो, कुछ गंदी निगाहों की मक्खियाँ उस पर पड़ जाती हैं जब वो बग़ैर हिजाब के, बग़ैर निकाब के जाती है, और ख़ास तौर पे भी जब आराइश में होती है, और ज़िबाइश में भी होती है और नुमाइश में भी होती है। इसीलिए फिर आगे दिल के मरीज़ लोगों की बात की गई आयत 60 से 62 में, लम यंतहिल मुनाफिकूना, यानी यहाँ मुनाफिक और दिल के रोगी और उन लोगों की तरफ इशारा है जो नबी के इर्द गिर्द सिर्फ फितने फैलाते थे। नबी की बीवी हज़रत आयशा पे तोहमत लगी, और भी कई ऐसे मवाक़े थे, बस इसमें से आपके मेरे लिए इतनी बात है कि अपने आप को रिस्क पे मत रखिए। आप देखिए, कोरोना में मर्दों ने भी पर्दा किया, औरतों ने भी किया, डॉक्टर्स ने भी किया, पायलट्स ने भी किया, तकरीबन 1.5 से 2 साल तक काम चले ना। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं पर्दा करके कैसे काम होगा। भाई आंखें तो खुली हैं और चेहरों की तो बात नहीं है ना। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी डिटेल से बात करते हैं अपनी क्लासेस में, अभी तो सिर्फ हिंट्स हैं। बस एक बात कीजिए कि अल्लाह से तौफीक मांगे कि अल्लाह जो हक बात है उस पर दिल जम जाए हमारा। फिर इसके बाद सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है कि क़यामत कब आएगी। ये 63 से 65 में हमें मिलता है पैगाम, लिहाजा नबी को कहने की ज़रूरत नहीं, पूछने की ज़रूरत नहीं, तैयारी करो। तैयारी नहीं करोगे तो आ भी गई तो तुम क्या कर लोगे। फिर थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो 66-68 में दुनियादार कायदीन की पैरवी का बुरा अंजाम। बहुत सारे लोग इस तरह के ख़ास तौर पर मसाइल में जिस पीछे गुजर रहे हैं, कुछ ऐसे दीनदार हजरात को पकड़ लेते हैं जो बड़े लीनियट होकर उनको रुख्सतें दे देते हैं। ये नहीं देखते कि ये ऑथेंटिक बात है भी कि नहीं। ऐसे लोग, और ओवरऑल भी देखिए, जो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कुछ लोगों का, उनका बुरा अंजाम है यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, उस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे। ये जो लफ्ज़ है ना तुकल्लब, इसको सोचते हुए शामी कबाब सोच लीजिए, जब एक साइड से पक जाता है ना तो फिर दूसरी तरफ से पलटा जाता है। रोस्ट किए जाएंगे, खूब तपाए जाएंगे उनके चेहरे आग में, फिर वो कहेंगे हाय अफसोस हम पे, हाय काश हम अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते। और वो कहेंगे ए हमारे रब, बेशक हमने तो अपने बड़ों की इताअत की है, जो लोग करते थे वही करते थे, जो हमारे बड़े कहते थे हम वही करते थे, कुबराना और भी बड़े, बस उन्होंने हमें रास्ते से भटका दिया। ए हमारे रब, इनको दुगना अजाब दे और इन पे लानत कर, बहुत बड़ी लानत। ये कौन से लोग हैं जिनकी झूठी तसल्लियों और झूठी लोरियों पे इंसान बेअमली की तरफ आता है दुनिया में। इसलिए आगे अहले ईमान को नसीहत है आयत 69 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, उन जैसे ना हो जाओ जिन्होंने मूसा को तकलीफ दी। फिर अल्लाह ने उनको बेगुनाह साबित कर दिया, और वो अल्लाह क्या बड़ी इज्जत वाले हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बाहयात है। अब आप देख रहे हैं कि औरतों के पर्दे के बाद मिसाल किसकी आ रही है, एक नबी की। तो ये जिस्म पे कपड़े पहन कर गुसल किया करते थे, लोगों ने मारूफ कर दिया कि जी इनके जिस्म पे कोई ऐब है। अल्लाह ने कुछ ऐसा मामला किया, हालात बने कि कुछ लोगों पे हजरत मूसा का जिस्म खुल गया, लेकिन वो अपने जिस्म को छुपाने की कोशिशों में थे। क्या पता चला कि जो लोग अल्लाह ताला की तरफ से वही पे होते हैं, फितरत पे होते हैं, वो बाहया होते हैं। फिर आगे जाते हैं तो आयत 70 से 71 में जुबान की हिफाजत से कई सआदतें हासिल होती हैं। इसलिए बहुत ही खूबसूरत गोल्डन वर्ड्स में लिखी हुई बातें हैं। नंबर एक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद इत्तकुल्ला, अल्लाह से डरो। फिर दूसरी बात, वकूलु कौलन सदीदा, सीधी बात किया करो, तीर जैसे निशाने पे लगता है ना, सीधी बात किया करो। कुछ बड़ी हैंकी पैंकी बातें करते हैं, दो दो क्या होता है, चार नहीं वो तो 22 होता है, इधर की बातें उधर की उधर नहीं, घुमा के बात नहीं करनी चाहिए। आप दावत दे रहे हैं या आप इवन घर में बात कर रहे हैं, कोई चीज़ चाहिए आपको, सीधी सी बात कर दें, ये ले आए, आपको बताइए, आपको बताया था, आप सोचें, भूजो तो जाने मैं कौन हूँ, मेरी आवाज़ पहचाने, ये बेकार बातें होती हैं। आप अगले का इम्तिहान लेके उसको शर्मिंदा करना चाहते हैं, तो सीधी बात कीजिए, बच्चों से भी सीधी बात करें। आप देखेंगे कल्ला बदल्ला, कलील मगर दलील वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम मुख्तसर भी था और मुदल्लल भी था। फिर क्या फ़ायदा होगा, युसलिह लकुम अमालकुम, तुम्हारे मामलात की, तुम्हारे अमाल की इसलाह हो जाएगी और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा बस वही कामयाब होगा, बहुत कामयाब होना। तो कुलू कौलन सदीदा, यानी सीधी बात करो। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फ़ायदा क्या होगा, अमाल की इसलाह हो सकेगी, गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और सीधी बात से इंसान की इज्जत होती है। आप देखिए, बिजनेस, ट्रेडिंग, किसी से लेन देन, जरा 0.1% शक पड़ जाए ना दूसरे फरीक को कि ये कोई बात छुपा रहा है, कोई घुमा रहा है, जो बात कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहा, वो डील नहीं होती, रिश्ते नहीं होते। अक्लमंद लोग कहते हैं नहीं ये पता नहीं कुछ बात सही नहीं कर रहा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, सच तो सच ही होता है, आज नहीं तो कल तो खुल ही जाएगा। और सूरत के एंड पे फिर एक अमानत की जिम्मेदारी जो इंसान पे डाली गई, 72-73, इन्ना रद्नल अमाना, हमने एक अमानत आसमानों ज़मीन पे भी डाली, पहाड़ों पे डाली, सब ने इनकार कर दिया कि इसको उठाएं और डर गए इससे। हाँ वह हमल इंसान, इंसान ने उसको उठा लिया क्योंकि इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला, इंसान बहुत ही जुलूम और जहूल है। अब सवाल यह है कि ये बारे अमानत क्या है, तो सबसे पहली बात दीन अमानत है जिसमें कोताही पे मुनाफिक और मुशरिक को अजाब मिलेगा, फिर जिसकी अदायगी पे मोमिन की बख्शिश होगी। तो आपका मेरा ये दीन, किसी ने इसमें कुरान को कहा, किसी ने इसमें इतात को कहा, मेरे ख्याल में पूरा दीन एक अमानत है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस पूरी सूरत में और अभी तक जो कुछ पढ़ा है उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।